इन दिनों में हम आने वाले दिनों में परमेश्वर के वचन का में जो देखना चाहेंगे, मैं यूहन्ना की पुस्तक से लूँगा। आज एक परिचय के रूप में कुछ बातें आपके सामने डालूँगा और उसके बाद यूहन्ना की पुस्तक से एक विशेष प्रभु यीशु मसीह के जो दावे हैं, क्लेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, जो 7 दावे हैं प्रभु यीशु मसीह ने बार बार कहा, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, उन 7 दावों को हम क्रम से देखेंगे, क्रम से उस पर अध्ययन करेंगे। लेकिन आज मैं आपके सामने कुछ परिचय के रूप में यूहन्ना के रूप में यूहन्ना की पुस्तक में डालूंगा। जब हम पूरी बाइबल में यूहन्ना सुसमाचार में 26 बार ये शब्द आया, मैं हूँ, और ना केवल यूहन्ना रचित सुसमाचार में, फिर उसके बाद हम दूसरा स्थान देखते हैं प्रकाशित वाक्य में 10 बार ये शब्द आया, मैं हूँ, और यशायाह में 9 बार ये शब्द आया, मैं हूँ। क्यों? बाइबल में, परमेश्वर के वचन में परमेश्वर ने बार बार इस शब्द का उपयोग किया है। इस बात को हमें जाना है, मैं हूं, मैं हूं। और इसीलिए मैंने कहा कि आज हम थोड़ा सा परिचय देखना चाहेंगे। किसी चीज को समझने के लिए हमें उसकी पृष्ठभूमि को जानना है, उसके परिचय को समझना है, तब हम आगे समझने पाएंगे, तब उन दावों को समझने पाएंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने दावे किए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने, आपको मालूम है, जो हमारे राष्ट्रपति थे, अब तो नहीं है, राधाकृष्ण जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, उनके जो सेक्रेटरी थे, उनके जो सचिव थे, पॉल राधाकृष्ण, वो राधाकृष्ण जो थे वो अविश्वासी थे, प्रभु को नहीं जानते थे। और उनके अंदर ये खोज उत्पन्न हुई कि किस रीति से उनके मन में शांति मिल जाए। और वो तब उनके चाचा जो थे, वो चाचा बहुत ही अधिक धार्मिक थे और अपने धर्म के, वो उनके चाचा भी मसीह नहीं थे, लेकिन वो अपने धर्म के गीता, रामायण और वेदों के बहुत ज्ञाता थे। वो एक दिन अपने चाचा के पास गए और अपने चाचा से उन्होंने प्रश्न किया, राधा कृष्ण ने ये प्रश्न किया, आप मुझे बताइए, मैं शांति चाहता हूं, मैं कौन से धार्मिक पुस्तक को पढ़ूं या किसके पास जाऊं कि मुझे शांति मिले। उन्होंने कहा कि तुम्हें अगर सच्ची शांति चाहिए तो तुम यीशु के धर्मशास्त्र को, यीशु के जीवन को, उसके धर्मशास्त्र को, बाइबल को पढ़ो। और तब राधा कृष्ण ने बाइबल को पढ़ना आरंभ करा और तब राधा कृष्ण ने बाइबल को पढ़ना आरंभ किया और उन्होंने प्रभु को पाया और उसके बाद उन्होंने अपने नाम के आगे पॉल जोड़ दिया और तब उनका नाम पॉल राधा कृष्ण कहलाया। क्या मतलब है? उन्होंने एक बात कही और तब आगे चल करके पॉल राधा कृष्ण, जब वो प्रभु के अनुयायी हो गए, और तब उन्होंने एक बात कही, ये खोजी थे, उनके चाचा ने उनको सलाह दी थी, उनकी सलाह पर आकर उन्होंने बाइबल पढ़ना आरंभ किया, यीशु को जाना आरंभ किया, सच्चाई को जाना, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, आगे बढ़ने लगे। और तब उन्होंने एक बात कहा कि यीशु मसीह के दावे इतने महान दावे हैं, अगर हम मसीह लोग उन दावों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें तो हिंदुस्तान में प्रचार करने की जरूरत नहीं, लोग अपने आप मसीह हो जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के दावों में सामर्थ है, प्रभु यीशु मसीह के दावों में अधिकार है, प्रभु यीशु मसीह के दावों में जीवन है, और इसलिए हमें बहुत ही अधिक सच्चाई के साथ उन बातों को समझना है। प्रभु यीशु मसीह ने, मैंने कहा कि 61 बार, हम पुराने नियम में भी कुछ बातों को देखेंगे जो आज इस स्थल हमने पढ़ा है, जो बहन वंदा ने पढ़ा निर्गमन, उसके 3:7-17 पद तक, उसमें भी हम जाएंगे, उसमें भी हम देखेंगे। जब हम उस बात को देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आगे बढ़ने से पहले यूहन्ना सुसमाचार को मेरे साथ निकाल लीजिए। यूहन्ना सुसमाचार, हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के उन चारों सुसमाचार में से एक सुसमाचार है, और यह यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के शिष्य में से बहुत प्रिय शिष्य था। केवल एक ही शिष्य था, 12 शिष्यों में से सारे शिष्य चले गए थे छोड़ करके, एक ही शिष्य यूहन्ना शिष्य था जो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाते के समय में वो वहां सामने था। और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, हे नारी, देख तेरा पुत्र ये। किसके लिए कहा? यूहन्ना के लिए कहा। और यूहन्ना से कहा, हे पुत्र, देख ये तेरी माता है। और तब उसके बाद हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु के समय में अपनी वो माँ जिसके द्वारा संसार में आया था, उसने उसको कभी माँ नहीं कहा, वो नारी अपने उसकी देखभाल यूहन्ना के हाथ में दी। और यही यूहन्ना एक दिन, बहुत अगर उसके जीवन के बारे में कभी मैं और विस्तार से बताऊंगा कि उसका वो मेरे और आपके समान व्यक्ति था, लेकिन बाद में उसने यीशु मसीह को इतनी निकटता से जाना था कि जब वो यीशु के प्रेम का वर्णन करने लगा, उसको एक समय ऐसा भी आया कि उसको खोलते हुए तेल के कढ़ाई में खड़ा कर दिया गया, और तब भी यूहन्ना के मुंह से ये निकला यीशु तुमसे प्यार करता है, यीशु तुमसे प्यार करता है, उसको प्रेम का पुजारी कहा गया। ये यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह का अनुयायी था, ये प्रभु यीशु मसीह के उन 12 शिष्यों में से एक था, और इसी ने प्रभु यीशु मसीह के साथ बहुत अधिक निकटता के साथ रहते हुए यीशु मसीह को देखा, जाना, सुना, अनुभव किया, और उसका वर्णन वो पहले यूहन्ना की पत्री में वर्णन करता है। सो जब यूहन्ना सुसमाचार में आते हैं, क्यों यूहन्ना का सुसमाचार लिखा गया? यूहन्ना के सुसमाचार को लिखने का एक विशेष उद्देश्य है, जो वो स्वयं यूहन्ना उसके 20वें अध्याय में और उसके 20वें अध्याय के 30 और 31 पद में बोलता है। यूहन्ना के सुसमाचार के या सामस सुसमाचार के लिखे जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये उद्देश्य है जो यूहन्ना उसका 20 अध्याय उसका 30 और 31 पद, यूहन्ना ने बहुत से अन्य चिन्ह भी चेलों के सामने दिखाए जो उस पुस्तक में नहीं लिखे गए, परंतु ये जो लिखे गए हैं इसलिए लिखे गए कि तुम विश्वास करो, इसलिए लिखे गए हैं तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। तुम विश्वास करो, क्या विश्वास करो? यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, यह विश्वास करना है। मेरे प्रियो, इस पृथ्वी के पर स्वर्ग के नीचे और कोई दूसरा नाम यीशु के अलावा नहीं है जिसने अपने आप को परमेश्वर के पुत्र के रूप में प्रकट किया हो, प्रदर्शित किया हो, प्रमाणित किया हो। कोई और नहीं संसार में यीशु के अलावा जिसने अपने आप को परमेश्वर के पुत्र के रूप में प्रदर्शित किया हो, प्रमाणित किया हो, प्रकट किया हो। यह सच है। और यीशु, क्यों यीशु ने अपने आप को प्रकट किया हम आगे देखेंगे। ये इसीलिए कहता है तुम उस पर विश्वास करो, बिना विश्वास के हम परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करते। और इसीलिए परमेश्वर का वचन रोमियों उसके 10:17 में कहता है, और विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है, और विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जब हम परमेश्वर के वचन को कानों से सुनते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह के आशीर्वाद को उनके और शिक्षाओं को सुनते हैं, हमारे हृदय में कुछ होता है और उस हृदय में वो परिवर्तन, वो वचन परिवर्तन लाता है। हमारा मस्तिष्क उसको समझता है। वचन को कानों से हम सुनते हैं, हृदय से हम ग्रहण करते हैं, मस्तिष्क से हम समझते हैं, मुंह से हम अंगीकार करते हैं, जीवन से प्रदर्शित करते हैं। मैं बार बार इस बात को कहता हूं, सुसमाचार जो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है, हम कानों से सुनते हैं, मस्तिष्क से हम समझते हैं, हृदय से हम ग्रहण करते हैं, मुंह से उसका अंगीकार करते हैं, जीवन से उसको प्रदर्शित करते हैं। यह सुसमाचार की शक्ति है। और इसीलिए यूहन्ना सुसमाचार कहता है तुम उस पर विश्वास करके जीवन प्राप्त करो। और इसीलिए यूहन्ना उसके 3:16 पद में, जो सबसे प्रिय पद संसार में माना जाता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। कैसा प्रेम किया? जगत से, किससे? मुझसे और आपसे, मैं और आपसे, मनुष्य से उसने ऐसा प्रेम किया। कैसा प्रेम किया? ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने आप को इस संसार में यीशु मसीह में होकर भेज दिया, अपने इकलौते को भेज दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, नाश ना हो अनंत जीवन पाए। यही यौना का उद्देश्य है जो सुसमाचार सुनाने का है। लेकिन क्यों यौना सुसमाचार के बारे में जब लिखता है तो यह कहना चाहता है कि लोग यीशु को जान सके कि यीशु सच मुझे कौन है, लोग यीशु को जान सके यीशु के पास क्या अधिकार है, लोग यीशु के पास को जान सके यीशु के पास क्या सामर्थ है, लोग यीशु को जान सके यीशु की प्रभु सत्य क्या है, लोग यीशु को जान सके उसका प्रेम कैसा है, लोग यीशु को जान सके उसका न्याय कैसा है, लोग यीशु के जीवन को जाने, यीशु के कार्य को जाने, यीशु के अधिकार को जाने, यीशु के सामर्थ को जाने, यीशु की प्रभु सत्ता को जाने। यह उद्देश्य यौना के सुसमाचार का है और इसीलिए उसने सारे सुसमाचार को लिखा है। और यही कारण है यौना सारे सुसमाचारों से अलग सुसमाचार है। जो आश्य कर्मों का उसमें यौना में वर्णन है वो दूसरे सुसमाचार में कुछ आश्य कर्म है जिनका वर्णन नहीं है, जो केवल यौना ही सुसमाचार वर्णन करता है। जब हमारे बच्चे यहां कैंप में आते हैं हमने उनको यौना का सुसमाचार पूरी सिखाया है, इस अध्याय को, और एक के बाद हम पूरे अध्याय को समझ सकते हैं। लेकिन जो विषय पे जिस पे मैं जाना चाहता हूं, जो लेकर हम चलेंगे, प्रभु यीशु मसीह का मैं हूं क्या कहा, यदि हम यौना उसके 8 अध्याय में और 8 अध्याय में 58 पद में प्रभु यीशु मसीह ने यहूदियों से बात करते कुछ कहा। उसका 8 अध्याय ज्योति जोर से पढ़िए।
यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं,
इससे पहले कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूं। यशाया, दानियल, दाऊद, मूसा, वे सबके से पहले अब्राहम था। और प्रभु कह रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह यहूदियों से बात कर रहे हैं, बहुत सारी वार्तालाप चलिए जो 8वें अध्याय में है। समय को ध्यान में रखते मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन जब उन्होंने कहा हमारे पास ऐसा कुआं है, ये कुआं है, अब्राहम ने दिया, इसने दिया, उसने दिया, कहते हैं प्रभु यीशु मसीह कहता है इससे पहले अब्राहम उत्पन्न हुआ। वो ये नहीं कह रहे मैं था, उसने कहा ना कहा, ये नहीं कहा मैं था, पास्ट टेंस नहीं है। प्रभु यीशु मसीह सर्वदा परमेश्वर, सर्वदा वर्तमान है, सर्वदा वर्तमान है। वो आदि में मैं हूं, अभी भी मैं हूं, आगे भी मैं हूं, हमेशा मैं हूं। इस बात को हमें समझना है, परमेश्वर सदा वर्तमान है, उसमें सदा सदा वर्तमान पाया जाता है। मेरे और आप में अतीत है, मेरे और आप में भूतकाल है, मेरे और आप में पास्ट टेंस है, लेकिन परमेश्वर में हमेशा वर्तमान है। और इसी चीज को ये स्पष्ट करते हुए उनको कहना चाह रहा है। तो जैसे मैंने कहा कि हम इसी विषय पर आएंगे, लेकिन हम इस मैं हूं को कैसे समझें, कहां से ये आरंभ हुआ, आइए मेरे साथ निर्गमन को निकालिए, जिसको आज हमने पढ़ा था। निर्गमन की पुस्तक उसका 3रा अध्याय। अब ये परमेश्वर की सनातन योजना है। लोग इस बात को कहते हैं, कई बार प्रश्न करते हैं कि अगर परमेश्वर को मालूम था कि संसार में पाप आ जाएगा तो परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया, या शैतान को क्यों आजाद कर दिया, या शैतान को क्यों ये बात की आजादी दे दी, उसको क्यों बनाया। परमेश्वर ने शैतान को नहीं बनाया था। लेकिन मैं हमेशा समझाने की कोशिश करता हूं, इसको समझिए, परमेश्वर ने अनंत की सृष्टि से, मनुष्य से पहले भी एक और सृष्टि थी जिसको कुलुसी में हम पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज में, उनमें स्वर्गदूत की सृष्टि थी। चाहे स्वर्गदूत की सृष्टि हो, चाहे परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया हो, उस मनुष्य की सृष्टि में, स्वर्ग की सृष्टि में परमेश्वर ने एक बहुत ही उत्तम गिफ्ट दी थी, एक बहुत ही उत्तम आशीष दी थी या वरदान दिया था। और वो वरदान ये था कि मनुष्य को या स्वर्गदूत को चुनाव की इच्छा दी थी, फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्रीडम ऑफ चॉइस आरंभ से। और इसी चुनाव आज भी वो मेरे और आपके पास भी है, आज भी मेरे और आपके पास है। हम स्वतंत्र हैं चुनाव के लिए। हमारे सामने बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं, बहुत सारी स्थिति आती हैं, बहुत सारी बात आते हैं, और कई सारी बार हम जो चुनाव करते हैं उसके लिए परमेश्वर ने हमें आजादी दी है। कुछ है जो परमेश्वर के वचन को जानते हुए उसके प्रकाश पे करते हैं, जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते वो अलग रहते हैं, लेकिन जो मैं और आप परमेश्वर को जानते हैं परमेश्वर के पास जाते हैं, इसीलिए उससे बुद्धि मांगते हैं, अगुवाई मांगते हैं, सलाह मांगते हैं, और तब परमेश्वर भी होकर आगे बढ़ते हैं। हम अपनी चुनाव को दूसरी रीति से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अदन की वाटिका में और इसी चुनाव के कारण शैतान ने उसका नाजायज फायदा उठाया और आदम हवा ने भी पाप में गिरे। लेकिन परमेश्वर जानता था, क्योंकि परमेश्वर अनंत है, परमेश्वर जानता था यह पाप होगा, मनुष्य गिरेगा, मैं उसका कैसा निवारण करूंगा, मैं उसको आगे कैसे बढ़ाऊंगा, मैं उद्धार की कैसे उसके लिए योजना बनाऊंगा, मुझे क्या करना होगा, वो सब कुछ प्रभु जानता था और जानता है। मैं और आपने केवल आज तक अपने आप को देखा है, लेकिन प्रभु मेरे और आपके बारे में, संसार के बारे में, पूरे विश्व के बारे में, सब कुछ के बारे में वो सब कुछ जानता है, सब कुछ जानता है। वो जानता है, परमेश्वर जानता है उसका कब आना होगा, कब अपने इकलौते पुत्र को पुनः भेजेगा। वो परमेश्वर जो सृष्टि करता सर्व सामर्थ्य परमेश्वर वो जानता है, वो अपनी सारी योजनाओं को अच्छी रीति जानता है मेरे प्रियो, और उसी के सनातन योजना में होकर वो सारे कार्यों में करने में लगा पड़ा है। लेकिन जब हम इस बात को देखते हैं तो हम देखते हैं उसी योजना में होकर मनुष्य ने पाप किया, और पाप करते हुए धीरे धीरे, पिछले दिनों में हमने उत्पत्ति की पुस्तक में बहुत गहराई से अध्ययन करा है सारी चीजों को, और धीरे धीरे हम देखते हैं किस प्रकार से अब उत्पत्ति के आखिरी अध्याय में ये लोग मिस्र में पहुंच गए। जब आप 49-50 अध्याय में आएंगे तो अब ये मिस्र में पहुंच गए, यूसुफ वहां पर है, यूसुफ शासक है, और अब याकूब के घराने के लगभग 70 लोग आकर मिस्र में आ गए। अब मिस्र में रहते रहते इनको कम से कम 300-400 साल हो गए, और इनकी प्रजा बहुत बढ़ गई है, अब लगभग 6,350 जन वहां पर हो गए हैं, 70 से बढ़कर इतने अधिक ये इसराइली लोग वहां पर बढ़ गए। हम अभी सुबह अपने डिवोशन में बच्चों के साथ जो डिवोशन कर रहे हैं उसमें हम लोग देख रहे हैं इस निर्गमन और जेनेसिस की पुस्तक में, अब इतने लोग बढ़ गए, अब इनको परेशानी है, ये परमेश्वर को पुकार रहे हैं, परमेश्वर को पर उस समय परमेश्वर ने एक अगुए को खड़ा किया है, उस अगुए का नाम मूसा है, और मूसा को परमेश्वर ने खड़ा किया ताकि वो उनको इसराइलियों को निकाल ले, और जैसे 7 पद में हमने पढ़ा था, 3 अध्याय के 7 पद में पर परमेश्वर क्या कहता है, निर्गमन 3:7, और यहोवा ने कहा निश्चय मैंने मिस्र में रहने वाली अपनी प्रजा की पीड़ा को देखा है, और उनसे बेकार कराने वालों के कारण उनकी पुकार पर ध्यान दिया है, क्योंकि मैं उनके दुखों को जानता हूं। ध्यान दीजिए, परमेश्वर एक ऐसा दूत परमेश्वर है जो अपने लोगों को देखता है, अपने लोगों पर ध्यान करता है, उनकी पुकार को सुनता है, और उनको वो उनके दुखों को वो जानता है। मेरे और आपके लिए बहुत ही अधिक प्रोत्साहन की बात है, हो सकता आप कोई स्ट्रगल में हो सकता आप कठिनाइयों में है, शायद परिवार में हो, विरोध है, शत्रुता है, घटी में, कमी में आप प्रार्थना करते हैं, शायद पति प्रभु में नहीं आए तो पत्नी रोती है कि पति प्रभु में आ जाए, पत्नी प्रभु में आ गई तो पति नहीं आया तो पत्नी रोती है प्रभु में आ जाए। प्रभु जानता है, देखता है, आपकी किसी भी आप स्थिति में हो प्रभु देखता है, और तब वो कहता है ये वचन जो है सबके लिए, इस संसार की स्थिति को उसने देखा, और तब वो कहता है 8 पद में, अतः मैं उतर आया कि उनको मिस्रियों के हाथ से छुड़ाऊं। ये एक प्रतीक था, ये एक चित्रण था, जिस रीति से इसराइलों को मिस्र की बंधुआई से छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने उतर कर एक उपाय किया, उसी रीति से मेरे और आपको मिस्र अर्थात पाप के बंधन से छुड़ाने के लिए जो मैं और आप पाप की गुलामी में थे, जिसमें दंड भोग रहे थे, जिसके कारण हमारी जीवन आशाहीन हो चुका था। और परमेश्वर का वचन कहता है सबने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से अरहित हैं। जो पापी जो प्राणी पाप करेगा निश्चय मर जाएगा। दंड की आज्ञा लग चुकी थी, कोई छुटकारे की हमारे लिए आशा नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने देखा। इसीलिए परमेश्वर का वचन ने कहा परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, जब उसने देखा ओ ये प्रजा परेशान है, हताश है, उद्धार के लिए प्रयास कर रही है, कहीं इधर जा रही है, कहीं उधर जा रही है, खोज कर रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन इनका सारा उपाय बेकार हो रहा है। परमेश्वर ने देख करके ध्यान दिया और अपने लौते पुत्र को मेरे और आपके लिए संसार में भेज दिया। लिखा है वो उतर आया, प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए इस पृथ्वी पर आ गए। ये कितनी अद्भुत बात है मेरे प्रियो। इस संसार में कोई ऐसा परमेश्वर नहीं है, कोई ऐसा ईश्वर नहीं है, कोई और ऐसा जन नहीं है जिसने मनुष्य के दुख को, पाप की पीड़ा को देखकर तरस खाया हो, दया खाई हो और अपने स्वर्ग स्थान को छोड़ करके मनुष्य बनकर मेरे और आपके लिए इस पृथ्वी पर आ गया ताकि मैं और आप बचाए जा सके। ये ना केवल इसराइलियों की कहानी थी, ये आज मेरी और आपकी। और तब इसके बाद वह आगे चल के कहता है, वो कहता है मिस्राइलियों मिस्रियों के हाथ से छुड़ाऊं और उस देश में निकालूं और एक अच्छी विस्तृत देश में पहुंचाऊं। तब ये बात आगे बढ़ रही थी तो मूसा परमेश्वर से पूछता है, मूसा से परमेश्वर बात कर रहा है 11 पद में। परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं और इसराइलों को मिस से निकाल ले आऊं, मैं कौन हूं? मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, मेरे पास कोई अधिकार नहीं है, मेरे पास कोई सामर्थ्य नहीं है, मेरे पास कोई भाषा नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं, मैं कौन हूं? और तब परमेश्वर ने क्या कहा 12 पद में, परमेश्वर ने उसने उत्तर दिया निश्चय मैं ही तेरे साथ रहूंगा और तेरा भेजने वाला मैं ही हूं। यहां पर सबसे पहले हम देखते हैं, इससे पहले भी हम जाने से इसमें भी इस बात को देखते हैं, लेकिन यहां पर थोड़ा और स्पष्टता के साथ है। और तब फिर मूसा परमेश्वर से बात करता है, तब और फिर 13 पद में मूसा, तब मूसा ने परमेश्वर से कहा देख यदि मैं इसराइलियों के पास जाकर उनसे कहूं तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है और वे मुझसे पूछे उसका नाम क्या नाम है, उसका क्या नाम है, तो मैं उसको क्या उत्तर दूंगा? परमेश्वर ने मूसा से कहा मैं जो हूं सो हूं। और उसने कहा इसराइलियों से तू इस प्रकार कहना मैं हूं ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। परमेश्वर का नाम क्या है? मैं हूं। यह परमेश्वर अपने नाम से संबोधित कर रहा है, आई एम। उसने कहा मैंने तुझे भेजा, मैं हूं, मैं तुझे भेज रहा हूं। जब तू फिरौन के पास जाए और फिरौन तुझसे पूछे कि कौन है, मैं था नहीं, मैं रहूंगा नहीं, मैं होऊंगा नहीं, ये नहीं, मैं हूं। उस समय भी मैं हूं, आज भी मैं हूं, कल भी मैं हूं। ये परमेश्वर की सच्चाई है। इसी को मेरे इस दिन में इच्छा है, बोझ है कि हम इन दिनों में इसी बात की गहराई को समझ सकें जब हम और आगे उन क्लेम्स में जाते हैं, दावों में जाते हैं। परमेश्वर वर्तमान परमेश्वर है, परमेश्वर के पास अतीत नहीं है, पास्ट नहीं है, परमेश्वर के पास फ्यूचर नहीं है, भविष्य नहीं है। यद्यपि अतीत उसके नियंत्रण में है, भविष्य उसके नियंत्रण में है, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमेशा हमेशा वर्तमान है। और यह हमें परमेश्वर को जानना है, यह। और तब वो आगे चल के कहता है, उसने कहा 15 पद में, तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, यह भी कहा तू इसराइल से इस प्रकार कहना तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर, अर्थात कौन पूर्वज, इब्राहिम के परमेश्वर, इजाक के परमेश्वर और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। जब परमेश्वर ने इब्राहिम, इजाक, याकूब को दर्शन दिया था तो उस समय परमेश्वर ने दूसरे नाम से उनको दर्शन दिया था और उसने उस समय उसको सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम से दर्शन दिया था। और पहले भी आपके सामने मैं शेयर कर चुका हूं कि जब हम अय्यूब की पुस्तक को पढ़ते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, तो अय्यूब इसी अब्राहम के काल का व्यक्ति है। इसीलिए अब्राहम अय्यूब की पुस्तक में सबसे अधिक बार परमेश्वर को जो संबोधन किया है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर किया गया है, क्योंकि अभी तक उसके बाद ये यहोवा नाम या मैं हूं नाम उस प्रकार से स्पष्ट नहीं हुआ था, लेकिन अब परमेश्वर इस नाम से अपने आप का परिचय दिला रहा है, ये अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा है, परिचय कर रहा है कि मैं हूं। और तब उसके बाद ये कैसा है, वो कह रहा अनंत काल के लिए यही मेरा नाम है, मुझे पीढ़ी दर पीढ़ी इसी नाम से स्मरण किया जाता रहेगा। अब यहां पर देखिए, अनंत काल आदि से इस बात से स्मरण किया जाता रहेगा, भविष्य तक अंत तक। अब यहां पर फ्यूचर आ गया, यहां पर भविष्य आ गया, किस प्रकार परमेश्वर अपने नाम का संबोधन कर रहा है, किस प्रकार से परमेश्वर अपने आप का परिचय कर रहा है। मेरे और आपके लिए बहुत बड़ी आनंद की बात है कि हम उस परमेश्वर के आराधक हैं, उपासक हैं, जो ऐसा अद्भुत परमेश्वर है। और वो ये कहता है कि मैं अनंत का परमेश्वर हूं, और यहां पर उसने अपना परिचय कराया है। अभी कैसा परमेश्वर है, जिस परमेश्वर के बारे में हम थोड़ा सा और देखना चाहेंगे कि जब हम देखते हैं तो ये परमेश्वर और कैसा परमेश्वर। आइए मेरे साथ निकालिए एक और स्थल में, यशायाह उसका 43वां अध्याय, यशायाह उसका 43वां अध्याय, यशायाह 43। यशायाह उसका 43वां अध्याय 43, उसके 10 पद से मैं पढ़ रहा हूं। यशायाह 43 43, यहोवा की वाणी है, तुम मेरे साक्षी और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि तुम समझ कर मुझ पर विश्वास करो। तुम मेरे साक्षी हो, तुम मेरे दास हो, मैंने तुम्हें चुना है, इसलिए चुना है ताकि तुम समझ के साथ मुझ पर विश्वास करो और ये जान लो कि मैं वही हूं, और ये जान लो कि मैं वही हूं। कौन हूं? ना तो मुझसे पहले कोई परमेश्वर हुआ और ना मेरे बाद कोई होगा। मैं आदि हूं, मैं अंत हूं, मैं अल्फा हूं, मैं ओमेगा हूं, मैं ए हूं, मैं जेड हूं। तुम जान लो, हमें परमेश्वर को जाना है। मेरे प्रियो, जितना अधिक मैं और आप परमेश्वर की सच्चाई को जानते, ध्यान से सुनेगा, जितना अधिक मैं और आप परमेश्वर की सच्चाई को जानते हैं, उसकी वास्तविकता समझते हैं, और जब जानते हुए उतना अधिक हमारा विश्वास बढ़ता है, उतना अधिक मैं विश्वास के साथ अपने जीवन को सही रीति से व्यतीत कर सकता हूं। तब मैं इस बात को जान लेता हूं और जान लेती हूं कि अब मेरे सामने कोई और परमेश्वर नहीं है, मेरे सामने अब कोई और ईश्वर नहीं है जिसके आगे मैं सर झुका सकूं। तब मैं किसी और से उसकी तुलना नहीं करूंगा, तब मैं उसकी और किसी और से नहीं तुलना नहीं करूंगी। अरे ठीक है, ये भी है तो ये भी है, नहीं 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 नहीं, परमेश्वर कैसा परमेश्वर है, वो और क्या कहता है यहां पर, वो कहता है ना तो मुझसे पहले कोई परमेश्वर हुआ और ना मेरे बाद कोई हुआ, मैं, हां मैं ही यहोवा हूं, और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं है, और कोई उद्धार करता नहीं है। क्या मतलब है उद्धार करता? मतलब कोई और पापों से छुटकारा देने वाला नहीं है। इसलिए प्रेरित काम उसके 4 अध्याय उसके 12 पद में पौल लूका इस तरह से कहता है कि इस पृथ्वी के ऊपर स्वर्ग के नीचे और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार प्राप्त कर सकें, और कोई उद्धार करता नहीं है। किसी और के द्वारा पापों की क्षमा नहीं है, किसी और के द्वारा स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं है, किसी और के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल नहीं है, किसी और के द्वारा परमेश्वर के राज में शामिल होना नहीं है, किसी और के द्वारा कलीसिया में जुड़ना नहीं है, किस कोई और नहीं है, केवल एक है जो यीशु है, जो उद्धार करता है, जो इस पृथ्वी पर परमेश्वर का पुत्र बनकर आया है, एक वो है और उसका नाम मैं हूं। मुझे और आपको समझना है और मेरे और आपके अंदर यही विश्वास दृढ़ होना है, यही विश्वास दृढ़ होना है। जब मैं प्रभु में नहीं आया था, जरूर मसीह परिवार में पैदा हुआ था, ठीक मेरी कहानी दूसरी थी, लेकिन मैंने रात रात रामायण सुनने में समय व्यतीत किया, रामलीला में ड्रामा का रोल प्ले किया, मुझे ड्रामे का बहुत शौक था, सब कुछ किया, सब कुछ किया, हर जगह में भाग लेता था, मेरी ये इच्छा रहती थी, कुछ ऐसा स्वभाव था। लेकिन जिस दिन प्रभु यीशु मसीह को जान लिया, संघर्ष था, कठिनाई थी, जरूर आसान नहीं था, पर प्रभु का धन्यवाद हो, धीरे 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 इस बात को जान किया और वहां पर रहते हुए परमेश्वर ने मुझे संभाला कि मैं किसी और के सामने उस एचएल में रहते हुए सिर ना झुकाऊं। अब 17 सितंबर आ रही है, जो हमारे भाई लोग खासतौर से फैक्ट्री में काम करते हैं उनके लिए आसान नहीं होता, मैं उन परिस्थिति में से होकर गया हूं जहां पर विश्वकर्मा पूजा होती है, किस रीति से जो कार्य करते हैं उनको मालूम है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो। प्रश्न यह है, आपके जीवन में आपने प्रभु यीशु मसीह को पाए हुए 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 5 साल हो गए, यीशु मसीह का क्या स्थान है? वो कह रहा है यहां पर और कोई उद्धार करता नहीं। आगे चल के क्या कहता है वो, मैंने ही यह घोषणा की है, उद्धार किया और वर्णन भी किया है, तुम्हारे मध्य में कोई पराई देवता ना था, इस कारण तुम ही मेरे साक्षियों में परमेश्वर हूं। यहोवा की वाणी है, अनंत काल से मैं ही परमेश्वर हूं। क्यों बार बार यशायाह नबी परमेश्वर की आवाज को सुन करके लोगों के सामने इस बात को बहुत दृढ़ता से कह रहा है, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं उद्धार करता हूं, मैं अनंत परमेश्वर हूं, मैं परमेश्वर हूं। क्यों कह रहा है? कह रहा है और कोई ऐसा कोई नहीं जो मेरे हाथ से छुड़ा सके, जो कुछ मैं करता हूं उसे कौन बदल सकता है? कौन है मुझे और आपको संसार में पाप के हाथ से, शैतान के हाथ से छुड़ा सके? कोई नहीं, ना तो हमारे धर्म, ना हमारे धर्म कर्म, ना हमारे क्रियाएं, ना हमारे लोग, ना हमारे गुरु, ना हमारे पुजारी, ना हमारे पादरी, ना हमारे कोई नहीं, केवल एक है जो हमें छुड़ा सकता है, वो यीशु मसीह, वो यीशु मसीह, उसका नाम ऊंचा हो। और मेरे प्रियो, उस यीशु को हमें अपने दिल में बैठाना है, उस यीशु को हमें मस्तिष्क में बैठाना है, उस यीशु को हमारे जीवन में बैठाना है, उस यीशु की प्रभुता हमारे अंदर आनी है। जब तक वो ना आए, हम इधर भी रहेंगे, उधर भी रहेंगे। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, तुम चुन लो तुम किसकी आराधना करोगे, यदि यहोवा परमेश्वर है तो तुम उसकी ओर हो लो, यदि और कोई परमेश्वर है तो तुम उसकी ओर हो लो। कब तक तुम दो विचारों में भटके रहोगे? मेरे प्रियो, दो नाव पे चलने से आदमी के जान का ही खतरा रहता और कुछ नहीं रहता। इसलिए आप जो यहां पर शायद पहली बार आए हैं, या 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने से चले आ रहे हैं, हम आपका स्वागत करते हैं, लेकिन आपको एक प्रार्थना करनी चाहिए, आपके मस्तिष्क को खुजलना चाहिए, आपकी आंखों को खुलना चाहिए, आपके कानों की खुजली मिटनी चाहिए, आपके हृदय में कुछ हलचल मचनी चाहिए और ये जाना चाहिए, यीशु ही एकमात्र प्रभु उद्धार करता है, इसलिए अगर मुझे उसके पीछे जाना है तो मैं सब कुछ छोड़कर उसके पीछे चलने के लिए तैयार होऊंगा और होंगी। अब वो पुरानी चीजें नहीं है जो पुरानी चली आ रही थी, जब ये लोग मिस्र में से निकल रहे थे, आगे बढ़ते जा रहे थे, उनको सब कुछ छोड़ना पड़ा। क्यों हम पुरानी चीजों को, पुरानी आदतों को, पुराने कार्य को, पुरानी रीति विधियों को, पुराने व्यवहारों को, पुराने वस्त्रों को, पुराने फैशन को, पुराने दिखावे को वो लिए रहते हैं? क्यों क्यों नहीं छोड़ना मांगते? इसलिए नहीं, क्योंकि वो प्रभु जिस रीति से यहां बैठना चाहिए अभी तक नहीं बैठा। शायद मस्तिष्क में ने कुछ सोचा है, शायद कुछ सोचा है, लेकिन यहां नहीं आया अभी तक। डॉक्टर बिली ग्राम ने एक किताब लिखी बहुत पहले, और उन्होंने कहा उस किताब में, काफी साल पहले मुझे मौका मिल पड़ा, और उन्होंने कहा कि हम किसी व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह को इस प्रकार से आमंत्रित करते हैं। क्या उन्होंने समझाया कि हम यीशु मसीह को अपने जीवन में इस प्रकार से आमंत्रित करते हैं। कैसे आमंत्रित करते हैं? जैसे कोई मेरे घर में मेहमान आया है, मैंने उसको आमंत्रित करा, आया उसको हमने पहले ड्राइंग रूम में स्वागत किया, वहां बैठा दिया, बातचीत की, सब कुछ किया, शायद चाय करना, अच्छा आइए मेरे डाइनिंग रूम तक आ जाइए, वहां पर कुर्सी बैठकर आप मेरे साथ चाय पी लीजिए। ठीक है, आप मेरे घर में आए। हम अंकल लॉली घर में थे, क्या सच में घर में गए थे? कहां तक रहे? और हमने आपको बाहर से वापस कर दिया, और उसके बाद आपने कहा मैं ठीक है, मैं प्रभु यीशु मसीह आइए मेरे घर में, मेरे जीवन में आइए, मेरे घर में आइए, हृदय रूपी घर में आइए। ठीक है, आप ड्राइंग रूम में बैठिए, वहीं बात करूंगा मैं। अच्छा थोड़ी देर के, अच्छा आप मेरे साथ डाइनिंग रूम में भी आ जाइए, लेकिन मेरे रूम में मत जाइएगा, क्योंकि उस रूम में आपको नहीं मालूम क्या क्या चीज रखी है। हो सकता है गंदी किताबें रखी हो सकता है दारू की बोतल रखी हो सकता है कुछ और ऐसी चीज। प्रभु वो आपके लिए नहीं है, वो कमरा आपके लिए नहीं है, वो आप मत जाइएगा। क्या हमने प्रभु यीशु मसीह को सचमुच पूरी रीति से पूरी जन्म में स्वीकार किया है? कहता कोई और नहीं है। और इसीलिए जो आई एम शब्द है, इस शब्द का बहुत गहरा अर्थ है, इसका बहुत गहरा अर्थ है, और इसको समझना है। प्रभु परमेश्वर जब आराम से कहता है, मैंने कहा 61 टाइम बाइबल में ये आई एम शब्द इस्तेमाल हुआ है, और प्रभु यीशु मसीह के मुंह से लगभग सबसे करीब 40 बार इस शब्द का इस्तेमाल प्रभु यीशु मसीह मुंह से हुआ है। और तब वो आगे चल के कहता है, इसीलिए कह रहा है मैं उद्धार करता हूं, मैं परमेश्वर हूं और मैं न्यायी परमेश्वर हूं। और ये आई एम, ये मैं हूं, यौना उसके बारे में क्या कहता है, आइए अब यौना में आइए। अब हम थोड़ा सा देखकर आज यहीं पर रुकना चाहेंगे, यौना उसका पहला अध्याय। अब ये जो मैं हूं, जिसका मां से देख रहे हैं, जो अनंत का परमेश्वर है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो उद्धार का परमेश्वर है, जो न्यायकर्ता परमेश्वर है, जो सब कुछ सार्वभौमिक परमेश्वर है, वो ऐसा परमेश्वर है, वो अब उसके बारे में यौना क्या कहता है। इसी मैं हूं ने जगत की उत्पत्ति की है, इसी मैं हूं ने जगत की उत्पत्ति की है, क्योंकि वो आदि में था और ये जगत की उत्पत्ति उसने वचन से की है। अतः पहले पद में कहता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उसमें उत्पन्न हुआ उसमें से कुछ भी उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य की ज्योति था और ज्योति अंधकार में चमकती है, पर अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। ये कौन है? आई एम, ये मैं हूं कौन है? ये मैं हूं परमेश्वर का वचन है, जो आदि में था, जिसके द्वारा सृष्टि गई। ये त्रिएक परमेश्वर है, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा। क्योंकि परमेश्वर अनंत है, परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह अनंत है, परमेश्वर पवित्र आत्मा अनंत है। समय नहीं कि मैं त्रिएकता के इन पदों को आपके सामने लाऊं, लेकिन ये त्रिएकता है। अदन आरंभ से परमेश्वर के सृष्टि में के समय में ये तीनों मैं हूं वहां उपस्थित थे। और इसलिए वो कहता है कि ये वचन जो वहां पर है, वचन क्या हुआ? उसके द्वारा सब कुछ उसके द्वारा अर्थात वचन से उत्पन्न। और उस वचन में क्या था, उस आयु में क्या था, उस मैं हूं में क्या था? सबसे बढ़कर उस मैं हूं में जीवन था, जीवन था। और अदन की बाटिका में अगर नाश हुआ तो क्या नाश हुआ? सबसे पहले जीवन दिया परमेश्वर ने, सबसे पहले जीवन दिया परमेश्वर ने। जब मनुष्य को बनाया तो उसमें उसने अपना श्वास फूका और मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। और जब जीवन परमेश्वर ने उसको दिया तो जीवन के बाद, लेकिन जैसे पाप आया, पाप ने जीवन को नष्ट कर दिया, पाप ने जीवन को नष्ट कर दिया। अब पुनः परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इसलिए भेज दिया ताकि उसके द्वारा मनुष्य पुनः जीवन को प्राप्त कर ले। ये परमेश्वर की अद्भुत योजना थी मेरा। और कितना अद्भुत है, उसमें जीवन था और वो जीवन इसलिए कहता है वो जीवन था और वो जीवन मनुष्य की ज्योति था। और तब कहता है इसीलिए आगे चल के आया वो अपने उन लोगों के बीच में आया परंतु बहुतों ने उसको ग्रहण नहीं किया। परंतु 17-18 पद, क्योंकि व्यवस्था मूसा के द्वारा आई दी गई पर अनुग्रह और सच्चाई तो यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। परमेश्वर जिसने अपने आप को उस आरंभ में आई एम करके मैं हूं करके मूसा के सामने प्रदर्शित किया, मूसा भी उसको नहीं देख सका। जब मूसा ने जलती हुई झाड़ी को तो देखा लेकिन परमेश्वर को नहीं देख सका। लेकिन क्या हुआ यहां पर, किसी ने नहीं देखा, परमेश्वर का इकलौता जो पिता की गोद में था उसी ने उसको प्रकट किया। ये जो मैं हूं हम उसको कैसे जाने पाए हैं, उस मैं हूं को जो आदि का मैं हूं उसको वर्तमान के मैं हूं के द्वारा जो यीशु मसीह है जो मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आया जिसने अपने आप को प्रकट किया। इसीलिए लिखा है जिसने पुत्र को देखा उसने पिता को देखा। पुत्र के द्वारा हम पिता तक पहुंचने पाए हैं। इसीलिए मेरे प्रियो जब आप प्रार्थना करते हैं, कई लोगों की मैंने प्रार्थना सुनी है वो प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना में नाम लेते हुए डरते हैं। कई जगह परमेश्वर 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 परमेश्वर, ठीक है हम परमेश्वर, लेकिन कौन सा परमेश्वर, कौन सा परमेश्वर। लेकिन अगर इसीलिए प्रभु यीशु मसीह में कहा है जो कोई मेरे नाम से मांगे, पुत्र के नाम से मांगे, यीशु मसीह के नाम से मांगे, किसी और के नाम से मांगे नहीं, मांगे यीशु के नाम से, मांगे पुत्र के नाम से मांगे। मेरे प्रियो और कोई नाम नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि पुत्र के द्वारा हम पिता को जाने पाए। तो पुराने नियम का जो मैं हूं जिसके साथ मूसा के साथ परमेश्वर कह रहा है मैं अनंत का परमेश्वर हूं, मैं उद्धार करने वाला परमेश्वर हूं, मैं ऐसा ऐसा परमेश्वर हूं, मैं नई परमेश्वर हूं, कई सारे और पद पुराने नियम में जो इन सारी चीजों को उस स्वभाव को प्रकट करते हैं, उसके कार्य को प्रकट करते हैं, उसके उस अधिकार को प्रकट करते हैं, उसके सामर्थ्य को प्रकट करते हैं, वो सब कुछ हम नए नियम में आकर यीशु मसीह में देखते हैं। और इसीलिए यहां पर कहता है कि किसी ने उसको नहीं देखा लेकिन इकलौते पुत्र ने प्रकट किया जो पिता की गोद में था उसे उसने प्रकट किया। और तब जब हम नए इस यौना के सुसमाचार में आते हैं तब हम देखते हैं कि यौना का सुसमाचार जैसे मैंने कहा सबसे अधिक 26 बार अपने 21 अध्याय हैं लेकिन 26 बार मैं हूं के शब्द को इस्तेमाल करता है, इस्तेमाल करता है। क्या मतलब है? वो इस बात को स्पष्ट रूप से ये साक्षी है, ये प्रदर्शीकरण है, ये प्रकट है, ये प्रमाण है, ये अधिकार है, ये सामर्थ्य है कि यीशु ही एकमात्र परमेश्वर है जो पिता की ओर से आया है। अगर परमेश्वर को जानना है तो सीढ़ी यीशु मसीह है। बिना प्रभु यीशु मसीह के आप परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते, किसी और के द्वारा नहीं। यीशु मसीह आपका व्यक्तिगत प्रभु और उद्धारकर्ता होना है, होना है। और यही है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन मुझे और आपको ये बार बार सिखाता है। सो आज जो हमने खास से मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया परमेश्वर के वचन से साथ मिलकर के हमने देखा है, सीखने का मिलकर प्रयास किया है, वो ये है कि हम समझ जाए कि जो नए नियम में बार बार प्रभु यीशु मसीह के जो दावे हैं या प्रभु यीशु मसीह के मुंह से मैं हूं शब्द निकल रहे हैं, क्यों ये शब्द निकल रहे हैं, ये कहां से आरंभ हुआ है, इसका परिचय करने वाला स्वयं परमेश्वर है जिसने मूसा को और मूसा के साथ साथ अन्य सेवकों को जो पहले हुए उनको दिया और उनके द्वारा लोगों तक पहुंचाया। अब वो मैं हूं यहां पर हम एक रूप में जो यीशु का रूप है या यीशु का शरीर के रूप में दैहिक रूप में जिसको हम कहते हैं कि उसने देह धारण किया उसमें होकर उसको देख सकते हैं। अब वही अधिकार जो पुराने नियम में हम यीशु में देख सकते हैं और इसलिए हमें यीशु के मैं हूं के अधिकार को उसको शब्द को समझना है। सो प्रभु हमारे आने वाले दिन में सहायता करेगा जरूर कि जब हम इन क्लेम्स पर विचार करते हैं अध्ययन करते हैं आने वाले दिन में एक एक करके क्यों, और ये सारे क्लेम जो हैं जितने क्लेम हैं हमें पुराने नियम में ले जाएंगे जितने भी दावे हैं हमें पुराने नियम मिले आएंगे और पुराने नियम से फिर हम नए नियम में आके देखेंगे क्या इसका परमेश्वर के साथ अनादि से या आदि से क्या परमेश्वर की योजना रही है और कैसे परमेश्वर इसको इस समय इस प्रकार से प्रकट कर रहा है। सो अंतिम में जो मेरे और आपके लिए विचार करने के लिए बात है, यदि हमने इस बात को जान लिया कि परमेश्वर ने अपने आप को मैं हूं करके प्रकट किया, हमने आज यहोवा के नाम पर विचार नहीं किया लेकिन मैं हूं के नाम पर विचार किया है, अगर मैं हूं तो क्या सच में वो प्रभु यीशु मसीह को हम जाने पाए हैं जो सच में सर्व अधिकारी परमेश्वर है। उस त्योहार में कहा, मैंने तुम्हारी पीड़ा को देखा है, मैंने तुम्हारी पुकार को देखा है। यदि आपने अपने पापों की छुड़ौती के लिए यीशु मसीह को नहीं पुकारा है, मेरे प्रियो, आप उसके छुटकारे से वंचित रह पाएंगे। लेकिन यह अनुभव का आना जरूरी है, प्रभु मेरे पाप से मुझे छुटकारा दीजिए। इस बात को जानिए कि प्रभु, और अगर आपने इस बात का अनुभव किया है तो प्रभु का आप धन्यवाद कीजिए, मैं जान गया प्रभु यीशु मसीह आप ही एकमात्र प्रभु है। तब दूसरी बात यह होती है, क्या मैंने उसके सर्व अधिकार को स्वीकार किया है, क्या सार्वभौमिक तक उसको स्वीकार किया है, उसको देखते हुए मेरे जीवन में, मेरे कार्य में, मेरे स्वभाव में, मेरे व्यवहार में, मेरे उठने बैठने में, मेरे खाने पीने में, मेरे कपड़े पहनने में, मेरे पहनने ओढ़ने में, सब कुछ में क्या फर्क पड़ा है या नहीं पड़ा है। बहुत चीजें, मसीह जीवन, मैंने कहा कि हम कानों से वचन को सुनते हैं, मस्तिष्क से समझते हैं और हृदय से उसको ग्रहण करते हैं, मुंह से उसका निकार करते हैं, जीवन से उसको प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा जीवन हर काम है, इवन हमारे पहनने ओढ़ने के द्वारा, इवन हमारे खाने पीने द्वारा, कोई बात नहीं। मैं तो प्रभु को जानता हूं, नशा कर लूं या दारू पी लूं या क्या बोलते हैं पुड़िया खा लूं, ये कर लूं, कोई नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं। हर चीज में कितना अधिक वो मैं हूं का अधिकार मेरे जीवन में है, कितनी उसकी प्रभुता है। प्रभु सहायता करें, प्रार्थना में रहिए, जाके जब हम आने वाले दिन में इस विषय पर आगे बढ़ते हैं, प्रभु हमें और समझने की शक्ति दे और उसमें उन्हें मेरे और आपके लिए क्या क्या उसको समझ सके। हम प्रभु का धन्यवाद करें कि सच में यीशु मसीह हमारा अनंत परमेश्वर है, आदि और अंत है, और वो पिता की ओर से भेजा गया है और उसके अलावा कोई और नहीं। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। थोड़ी देर अपने आप पर विचार करें। क्या सच में उस प्रभु यीशु मसीह को आपने केवल मसीह समझा है या आपके हृदय के अंदर वो बस चुका है? क्या आप रोज अंश करके परिवर्तित हो रहे हैं? प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें, मेरी और आपकी अभिलाषाओं को और अधिक बढ़ाएं, ताकि हम उस मैं हूं जो सो मैं हूं उसको और अधिक गहराई से जान सकें, उसको पहचान सकें, उसको समझ सकें और वो हमारे जीवन में सर्वस्व प्रभुता करने पाए। प्रभु हम आपके भारी हैं, आपकी दया और करुणा के लिए, आपके पवित्र वचन के लिए, आपकी सहायता के लिए। परमेश्वर पिता, जो वचन आपने अपनी सहायता द्वारा हम तक पहुंचाया है, मेरी और हम सबकी आप मदद करें कि हम इस वचन के प्रकाश में और भी सोच सकें, विचार कर सकें, जान सकें कि आपकी प्रभुता, आपका सर्वाधिकार मेरे व्यक्तिगत जीवन में, हम सबके व्यक्तिगत जीवन में कितना अधिक है। हमें और अधिक प्रभु आप अपने समर्पण में ले जाएं, हमें और अधिक प्रभु आप अपनी आज्ञाकारिता में ले जाएं, हमें दीन बनाएं प्रभु, हमें नम्र बनाएं, और हम संसार से अपने आप को अलग कर सकें, संसार की चीजों से अलग कर सकें, संसार की बातों से अलग कर सकें, पाप हमारी दृष्टि में पाप ठहरने पाए, अनुचित कार्य हमारी दृष्टि में अनुचित कार्य बनने पाए, झूठ छल धोखे से इन सारी चीजों से प्रभु आप हमें अलग करें। हम उसमें हूं कि प्रभु सत्ता को, उसके अधिकार को, उसकी पवित्रता को, उन सारी चीजों को, उसके न्याय को गहराई से परमेश्वर आपके आत्मा के भय में होकर समझ सके। दया कीजिए प्रभु, दया कीजिए प्रभु, हम आपसे दया की भीख मांगते हैं। इस मंडली के एक परिवार को, एक जनों को जो प्रभु जी आपको जानते हैं, उनको हम आपके हाथों में सौंपते हैं, उनके जीवन में और अधिक आपका गहरा समर्पण पाया जा सके। प्रभु जी जो इन्होंने आपको अभी तक नहीं जाना, वो आपके वचन को सुनकर आपके ओर खींचे जाएं, केवल वचन के द्वारा उनके कान की खुजली ना मिटाई जाए, केवल ये वो ये ना कहें कि वचन बहुत अच्छा था, लेकिन वो कह सके कि प्रभु ने मेरे जीवन को बदला है, मेरे जीवन से बातें की है, मेरे जीवन में कार्य किया है, और एक निर्णय उनके जीवन में दिखाई दे सके। दया कीजिए प्रभु इस कलीसिया पर, प्रभु अपना अनुग्रह करिए, हमारे परिवारों को अपनी रक्षा में, अपनी सुरक्षा में, अपनी पवित्र आत्मा के घेरे में बना के रखिए, हमारे जवान बच्चों को प्रभु अपने हाथों में रखिए। हे पिता, इनमें से कोई भी खोने ना पाए, ये जो छोटे छोटे बच्चे जो आगे चल के बड़े होंगे, प्रभु हम इनमें से किसी को खोते हुए नहीं देखना चाहते, कोई शैतान इनको छूने ना पाए, इनका जीवन आप में सुरक्षित रह सके। पिता दया कीजिए, हमारी यही अभिलाषा है, हमारी यही प्रार्थना है। सारा धर्म आपको देते, अपने प्राण आत्मा देशर को आपके हाथों में सौंपते हैं। जब हम भवन से बाहर निकलते हैं, आपकी हमारे उपस्थिति हमारे साथ हो, पूरे हफ्ते जहां कहीं भी रहें, प्रभु जी आपके वचन हमारे कानों में स्मरण दिलाए जा सकें, और उसी में होकर, वचन की सामर्थ में होकर हम जीवन को व्यतीत कर सकें। हमें अपने वचन में जीना सिखाइए, दया कीजिए। हमारी बाहर संगति पर भी प्रभु आपकी आशीष पाई जा सके। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए प्रातः उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम के मांगते हैं, आमीन। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पवित्र आत्मा की सहभागिता हमें से हरेक के साथ अब से लेकर हमेशा होती रहे।